आत्मा नाम के प्रमेय का विवेचन अभी चल रहा है। तो पूर्व पाठ में जो है यहाँ तक सिद्ध हुआ था कि आठ प्रकार के जो द्रव्य हैं उसमें बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये गुण नहीं रह सकते। वह किसी इनसे भिन्न में रहेंगे, नवमे द्रव्य में रहेंगे, और वह नवा द्रव्य जो है जिसमें ये बुद्धि आदि गुण रहते हैं वही है आत्मा। अब इसको अनुमान वाक्य के द्वारा इसी बात को यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि आत्मा नाम का जो द्रव्य है इसी द्रव्य में ये बुद्धि आदि गुण रहते हैं, और ये जो आठ प्रकार के द्रव्य हैं पृथ्वी आदि उसमें ये बुद्धि आदि गुण नहीं रहते हैं। इसके लिए जो अनुमान वाक्य का प्रयोग होगा वो अनुमान वाक्य जो है यहाँ पर बताया जाता है। कहते हैं प्रयोगश्च बुद्ध्यादयः पृथ्वी आदि अष्ट द्रव्य अतिरिक्त द्रव्य आश्रिताः, ये प्रतिज्ञा वाक्य। इसमें कहा गया कि बुद्धि आदि जो विशेष गुण हैं वो पृथ्व्यादि अष्ट द्रव्य, पृथ्वी आदि जो आठ प्रकार के द्रव्य हैं, एक बार फिर से नाम बता दूं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक् और मन, ये हैं पृथ्वी आदि अष्ट द्रव्य। इन आठों द्रव्यों से अतिरिक्त जो द्रव्य है वह कोई भी द्रव्य है, मन में रखे कि आत्मा नाम का द्रव्य है, तो उस इन आठों द्रव्यों के अतिरिक्त द्रव्य में बुद्धियादयः आश्रिताः, बुद्धि आदि जो विशेष गुण है ये आश्रित होते हैं। क्यों इनके अतिरिक्त द्रव्य में आश्रित होते हैं, तो आगे हेतु देते हैं कि पृथ्वी आदि अष्ट द्रव्य अनाश्रितत्वे सति गुणत्वात्, क्योंकि ये जो पृथ्वी आदि आठ प्रकार के द्रव्य हैं इसमें बुद्धि आदि अनाश्रित होते हैं और गुण होते हैं। तो जब गुण हैं इसका मतलब है कि किसी द्रव्य पर आश्रित होंगे, और पृथ्वी आदि जो है आठ प्रकार का द्रव्य उसमें ये चूंकि आश्रित होते नहीं हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कि इन आठों के अतिरिक्त जो द्रव्य है उसी में यह आश्रित है। फिर आगे कहते हैं कि यस्तु पृथिव्यादि अष्ट द्रव्य अतिरिक्त द्रव्य आश्रितो न भवति, माने जो पृथ्वी आदि आठ द्रव्य से भिन्न द्रव्य पर आश्रित नहीं होता है, नासो पृथ्वी आदि अष्ट द्रव्य अनाश्रितत्वे सति गुणोपि भवति, ताकि वह गुण जो है कभी जो गुण पृथ्वी आदि आठ द्रव्य के अतिरिक्त द्रव्य पर आश्रित नहीं होता है वह गुण कभी भी पृथ्वी आदि अष्ट द्रव्य पर अनाश्रित होते हुए गुण नहीं हो सकता। यथा रूप आदि ही, जैसे रूप आदि है, ये रूप आदि जो है ये पृथ्वी में रूप रहता है, रस जो है वह जल में रहता है, तो ये सब जो है यथा रूप आदि ही, तो रूप आदि जो है पृथ्वी आदि अष्ट द्रव्य में ही रहता है, उसके अतिरिक्त द्रव्य में नहीं रहता है। नासो पृथ्वी आदि अष्ट द्रव्य अनाश्रित तत्वे सति गुणोपभवति, तो इस तरह से इन्होंने ये कहा कि ये जो बुद्धि आदि गुण हैं वो पृथ्वी आदि आठ द्रव्य में तो रहते नहीं है, इसके अतिरिक्त द्रव्य पर ही आश्रित होते हैं, क्योंकि ये गुण है, क्योंकि गुण है तो इसका मतलब है कि कोई न कोई आश्रित होने के लिए उसका द्रव्य होगा, तो वह जो भी द्रव्य है वही द्रव्य है आत्मा। और यहाँ पर यस्तु पृथिव्यादि अष्ट द्रव्यातिरिक्त द्रव्याश्रितो न भवति, नासो पृथिव्यादि अष्ट द्रव्यानाश्रित तत्वे सति गुणोपि भवति, ये जो कहा ये यहाँ पर व्याप्ति दिखाया है। कौन सी व्याप्ति दिखाई है, तो केवल व्यतिरेकी व्याप्ति दिखाई है। केवल व्यतिरेकी व्याप्ति के लिए इससे पहले भी आया था कि साध्याभाव में अगर हेतु का अभाव होता है, साधन का अभाव होता है, तो वहाँ पर केवल व्यतिरेकी व्याप्ति कहा जाता है, और उसको केवल व्यतिरेकी अनुमान भी कहते हैं। और जहाँ साध्य का भाव हो उसमें हेतु का भी भाव हो, साधन का भाव भी भाव हो, तो उसको अन्वय व्यतिरेकी कहा जाता है। तो इसको केवल व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा भी इस बात को बताया जा सकता है, किस बात को, कि बुद्धि आदि गुण जो हैं आठ द्रव्य से अतिरिक्त नवें द्रव्य में रहते हैं, इस बात को केवल व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा भी बताया जा सकता है और अन्वय व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा भी बताया जा सकता है। तो दोनों प्रकार के अनुमान से बताया जा सकता है। तो अभी जो हमने पंक्तियां पढ़ी हैं वो केवल व्यतिरेकी अनुमान की पंक्ति है, अन्वय व्यतिरेकी वाले अनुमान की पंक्ति आगे आने वाली है। तो फिर से एक बार देख लें, केवल व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा हम कैसे ये सिद्ध करते हैं कि बुद्धि आदि गुण पृथ्वी आदि आठ द्रव्य से अतिरिक्त द्रव्य में रहने वाले गुण है। तो उसके लिए फिर से एक बार पंक्ति पढ़ते हैं, केवल व्यतिरेकी अनुमान की ये पंक्ति है, उसका यह प्रयोग है, अनुमान का प्रयोग है कि बुद्ध्यादयः पृथ्वी आदि अष्ट द्रव्य अतिरिक्त द्रव्य आश्रिताः पृथ्वी आदि अष्ट द्रव्य द्रव्य अनाश्रितत्वे सति गुणत्वात् यस्तु पृथ्वी आदि अष्ट द्रव्यातिरिक्त द्रव्याश्रितो न भवति नासो पृथ्वी आदि अष्ट द्रव्य अनाश्रितत्वे सति गुणोपि भवति यथा रूपादि। यह है केवल व्यतिरेकी अनुमान, और इसी अनुमान के द्वारा विप्रतिपन्न बुद्धि वाले जो हैं उनको आत्मा के बारे में बताया जाएगा कि भैया देखो आत्मा जो है वह नवे नाम का द्रव्य है जिसमें बुद्धि आदि विशेष गुण रहते हैं। अब अन्वय व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा भी इस बात को बताया जा सकता है, उसका प्रयोग बताते हैं आगे। तथा ही बुद्ध्यादयः पृथ्वी आदि अष्ट द्रव्य अतिरिक्त द्रव्याश्रिताः, बुद्धि आदि जो विशेष गुण है वो पृथ्वी आदि आठ द्रव्य से अतिरिक्त माने भिन्न जो द्रव्य है नवा उस पर आश्रित है। क्यों? तो पृथ्वी आदि अष्ट द्रव्य अनाश्रित तत्वे सति, क्योंकि ये बुद्धि आदि जो है ये पृथ्वी आदि आठ में तो अनाश्रित हैं और गुण है। यो यत अनाश्रितो गुण, जो अनाश्रित गुण होते हैं वह सह तदतिरिक्त आश्रितो भवति, और ऐसा गुण जो है उनसे अतिरिक्त पर आश्रित गुण होता है। यथा पृथ्वी आदि अनाश्रित शब्द, जैसे पृथ्वी आदि द्रव्य में अनाश्रित रहने वाला जो शब्द है वह शब्द किस में रहता है, तो पृथ्वी से आदि से अतिरिक्त में रहता है। तो वही कहा पृथ्वी आदि अतिरिक्त आकाशाश्रय, जैसे जो अनाश्रित गुण है वह क्या होता है, किसी अतिरिक्त पर आश्रित होता है। जैसे पृथ्वी आदि पर अनाश्रित शब्द गुण है वह पृथ्वी आदि से अतिरिक्त आकाश पर आश्रित होता है। तथा च बुद्ध्यादयः पृथिव्यादि अष्ट द्रव्य अतिरिक्त आश्रयः, इस तरह से बुद्धि आदि जो विशेष गुण है वो पृथ्वी आदि आठ द्रव्यों से अतिरिक्त द्रव्य पर आश्रित है। इसको सिद्ध कैसे कर दिया, केवल व्यतिरेकी अनुमान और अन्वय व्यतिरेकी अनुमान दोनों के आधार पर, और उसका क्या स्वरूप होगा, प्रयोग अनुमान का क्या प्रयोग होगा वो भी बताया। फिर आगे कहते हैं तदेवम पृथ्वी आदि अष्ट द्रव्य अतिरिक्तो नवमम द्रव्यम आत्मा सिद्धः, ताकि इस तरह से अनुमान के द्वारा ये सिद्ध हुआ कि पृथ्वी आदि जो आठ द्रव्य हैं उनसे अतिरिक्त नवा द्रव्य जो है वह आत्मा है, और उस आत्मा की इस तरह से सिद्धि होती है। तो इस तरह से इन्होंने नवम द्रव्य आत्मा की सिद्धि की। फिर आगे कहते हैं कि सच सर्वत्र, यह जो नवम द्रव्य है आत्मा ये सर्वत्र सर्वत्र रहता है। पहले आया था ना कि ये विभू होता है, तो विभू होता है, विभू का मतलब व्यापक होता है, जो सर्वत्र रहने वाला हो उसे विभू कहते हैं अथवा व्यापक कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा ये भी समझ लीजिए कि सर्वत्र रहने का मतलब क्या है, कि जितने दो तरह के पदार्थ हैं मूर्त और अमूर्त, तो मूर्त पदार्थ जितने भी हैं सबके साथ इनका संयोग संबंध रहता है आत्मा का। तो जो सारे मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग संबंध का होना जो है यही इसकी व्यापकता है आत्मा की। तो स्वच सर्वत्र माने आत्मा जो है वह सर्वत्र विद्यमान होता है, वह व्यापक होता है। कार्योपलम्भाद विभु, क्योंकि कार्य जो है आत्मा का दो प्रकार का जो है कार्य होता है, एक वह जिसको कि वह आत्मा अपने प्रयत्न से उत्पन्न करता है, और अपने प्रयत्न से उत्पन्न करने के लिए उस आत्मा को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, शरीर की ज़रूरत पड़ती है। तो शरीर में रह करके आत्मा अपने प्रयत्न से जो कार्य करता है एक प्रकार का ये कार्य हुआ, और दूसरा हुआ कि आत्मा जो है ना कहीं दूर दूर से ही जो है किसी कार्य को उत्पन्न कर देता है। तो एक तो हुआ कि आत्मा शरीर में रह करके जो है कार्य को उत्पन्न करता है, और दूसरा आत्मा जो है अपने से दूर वाली जगह पर भी जो है कार्य को उत्पन्न करता है। वह कैसे करता है? तो अदृष्ट नाम के प्रयत्न से। आत्मा जो है अदृष्ट के द्वारा दूर में कार्य करता है और प्रयत्न के द्वारा जो है अपने पास कार्य करता है। तो इस तरह से आत्मा दो प्रकार का कार्य करता है। तो जहाँ मतलब यहाँ पर भी कार्य का उपलम्ब हो रहा है, उपलम्ब माने प्राप्ति या दर्शन तो या ज्ञान कह लीजिए, तो कार्य का ज्ञान यहाँ भी होता है और दूर में भी जो है कार्य का ज्ञान होता है। तो इस तरह से सर्वत्र अगर हम व्यापक मानेंगे आत्मा, तभी जो है ये बात बन पाएगी कि यहाँ भी आत्मा काम करेगी और दूर में भी आत्मा काम करेगी। अगर व्यापक नहीं मानेंगे तो एक ही जगह आत्मा रह करके काम कर सकती है, दूर में रह करके काम नहीं कर सकती है। इसलिए कहा कि सच सर्वत्र कार्योपलम्भाद विभु, माने यह आत्मा सर्वत्र कार्य की उपलब्धि होने के कारण यह आत्मा विभु होती है, व्यापक होती है। अब सवाल आया कि विभु होने के लिए, व्यापक होने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? तो आगे कहते हैं कि परम महत परिमाणवान इत्यर्थ। अब देखिए कि कोई व्यक्ति है वो 6 फुट का है या 7 फुट का है, उसका जो परिमाण है वह सीमित परिमाण है। वह तो सीमित परिमाण वाला जो है वह कभी भी सर्वत्र नहीं रह सकता। असीमित परिमाण वाला जो है, या ये असीमित नहीं कहकर ये कहे कि परम महान परिमाण जिसका होगा वही विभु होगा, वही व्यापक होगा। तो आत्मा में भी जो परिमाण होता है वह परम महत परिमाण होता है, ऐसा न्याय दर्शन का मानना है। तो चूंकि आत्मा में परम महत परिमाण होता है, इसीलिए आत्मा सर्वत्र रहती है, आत्मा व्यापक होती है, विभु होती है। आगे कहते हैं कि विभुत्वाच्च नित्योसौ व्योमवत्, ताकि और विभु होने के कारण ही जो है यह आत्मा नित्य भी होती है। कैसे? उदाहरण दिया व्योमवत् माने आकाश की तरह। जैसे आकाश क्या है? सर्वत्र है, सर्वत्र व्यापक है आकाश। आकाश सर्वत्र रहता है और आकाश सर्वत्र होने के कारण, व्यापक होने के कारण, विभु होने के कारण नित्य होता है। उसी तरह से व्योम की तरह, व्योम माने आकाश, आकाश की तरह आत्मा भी जो है विभु होने के कारण वह नित्य है, सर्वत्र व्याप्त है। और सुखादीनाम वैचित्र्यात् प्रति शरीरम भिन्नः। असल में इन्होंने जो शुरू में आत्मा के लक्षण बताने के समय में इन्होंने जो कहा था ना कि यह आत्मा जो है वह प्रति शरीर भिन्न होता है, नित्य होता है, विभु होता है, ये जो 3 बातें वहाँ पर बताई गई थी उन्हीं 3ों को यहाँ पर जो है सिद्ध किया गया है कि आत्मा जो है प्रति शरीर भिन्न कैसे है, आत्मा जो है नित्य कैसे है और आत्मा जो है विभु कैसे है। तो उसमें सबसे पहले तो बताया कि आत्मा विभु कैसे है, तो कहा कि सर्वत्र कार्योपलम्भात्, कि कोई भी जो कार्य होता है उस कार्य को आत्मा ही करती है। बिना आत्मा जो है, अच्छा आत्मा के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो कार्य को करे। तो सर्वत्र, और यह कार्य सर्वत्र उपलब्ध होता है, इसीलिए आत्मा विभु होती है। तो वहाँ जो कहा कि आत्मा विभु होती है उसमें हेतु बताया सर्वत्र कार्योपलम्भात्, ठीक है। और एक बताया कि विभु होने के लिए क्या चाहिए, कि परम महत परिमाणवान होना चाहिए। अगर लघु परिमाण होगा या मध्यम परिमाण होगा तो वह सर्वत्र नहीं रह सकता। फिर जो कहा था कि आत्मा जो है वह विभु होती है, तो विभु होने के लिए, तो चलिए विभु के होने के लिए तो कारण बताया सर्वत्र कार्योपलम्भात्। फिर कहा था कि आत्मा नित्य होती है, तो उसके लिए कारण बताया विभुत्वात्, चूंकि वो विभु है आत्मा इसलिए वह नित्य है। विभुत्वात् में जो पंचमी है ना वो हेतु में पंचमी है, तो विभुत्व हेतु के कारण आत्मा में नित्यत्व सिद्ध होता है। और उदाहरण भी दे दिया व्योमवत मन व्योम की तरह, और फिर एक कहा था प्रति शरीरम भिन्न, ताकि आत्मा को प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न क्यों मानते हैं, तो इसका जवाब दिया सुखादी नाम वैचित्र्यात प्रति शरीरम भिन्न, ताकि सुख दुख आदि जो है उसमें वैचित्र रहता है, वैचित्र रहता है माने वैविध्य रहता है। जो देवदत्त जो है सुख का अनुभव करता है, तो वहीं देवदत्त यज्ञदत्त जो है दुख का अनुभव करता है, विष्णुदत्त जो है वो तटस्थ रहता है, न सुख का अनुभव करता है न दुख का अनुभव करता है, एक ही वस्तु से किसी को सुख होता है और किसी को दुख होता है, तो इस तरह से सुख आदि जो है ना उसमें वैचित्र्य है वैविध्य है, उसको अगर हम प्रत्येक शरीर में अगर भिन्न भिन्न हम आत्मा नहीं मानेंगे, सबके शरीर में एक प्रकार की ही आत्मा मानेंगे, तो सुख होगा ना तो सबको सुख ही होने लगेगा, दुख होगा ना तो सबको दुख ही होने लगेगा, इसीलिए सुख दुख आदि के वैचित्र्य के कारण वैविध्य के कारण प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा रहती है, इस सिद्धांत को न्याय दर्शन स्वीकार करता है। इस तरह से आत्मा नाम का जो प्रमेय है उस प्रमेय के बारे में यहाँ पर विवेचन किया गया, और आत्मा को अनुमान के द्वारा जो है सिद्ध किया गया कि आत्मा आठ द्रव्य के अतिरिक्त नवम द्रव्य है, और इसी नवम द्रव्य में बुद्धि आदि जो विशेष गुण है, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न, ये गुण इस पर आश्रित होते हैं, बुद्धियादि गुणों का आश्रय जो है वही नवम द्रव्य आत्मा है। इस प्रकार से आत्मा के बारे में यहाँ पर विवेचन किया गया। अब प्रमेय में दूसरा नंबर आता है आत्मा के बाद शरीर का, तो शरीर के बारे में फिर हम अगले पाठ में पढ़ेंगे कि शरीर क्या होता है, उसका क्या लक्षण है। आज यहीं रखते हैं।